दुख में अटक जाते हैं, सुख में भटक जाते हैं। 22 अगस्त सोमवार को जैन स्थानक गुडमंडी में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज साहब ने फरमाया कि कैसे नादान है हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। जिंदगी की खूबसूरती यह नहीं कि आप कितने खुश हैं, खूबसूरत जिंदगी से यह पता चलता है कि आपसे मिलकर कितने लोग खुश हुए हैं। हम छोटी छोटी बातों को लेकर अटक जाते हैं जिससे चेहरे की प्रसन्नता चली जाती है। अतः अटकन को तोड़ा जाए इसके लिए स्वयं को ही समझना पड़ेगा। प्रभु महावीर कहते हैं कि तू ही तेरा करता है, तू ही तेरा भोगता है। हमारे भीतर में ज्ञान है, बस प्रकाश की जरूरत है जो कि दुख अंधियारा मिटा देगा। लोग कहते हैं कलयुग में धर्मी ज्यादा दुखी हैं, अधर्मी कम। इसका कारण है धर्म, तप, जप करने से अनुदय प्राप्त कर्म जो भव भव तक भोगने वाले थे वे तप संयम से पहले ही भोग लिए जाते हैं। इसे कहते हैं उदीरना। दो महत्वपूर्ण शब्द है उदय और उदीरना। उदय तो अपने क्रम से जो कर्म उदय में आते हैं और एक वे कर्म जो अभी उदय में नहीं आने वाले हैं उन्हें साधना विशेष से खींचकर पहले ही कम समय में भोग लेना। भगवान महावीर, मैतार्य मुनि, गजसु कुमाल मुनि आदि ने संयम भी लिया और घोर कष्टों को संभाव से सहा तो कर्मों का भुगतान जल्दी कर दिया। अर्जुन अनगार को कर्म कितने भोगने पड़े। किसी ने गाली दी तो किसी ने अपमान किया तो किसी ने धक्का दिया तो किसी ने आहार नहीं बहराया। इन सब बातों को संभाव से खुशी खुशी सहने से वो कर्म जल्दी भोगकर मोक्षगामी हो गए। अतः जो सद्गृहस्थ है, श्रावक है, वो धर्म कर रहा है, उसे अगर कष्ट आता है तो समझ लो उदीर्णा हो रही है, जिससे भव भव में भोगे जाने वाले कर्मों का भुगतान जल्दी हो रहा है। अतः धर्मी को कष्ट आना सहज है क्योंकि उन्हें भव भव तक कर्म नहीं भोगने हैं। सांप सीढ़ी खेल होता है, उसमें सर्प भी है और सीढ़ी भी। कोई पाप किया तो सर्प के मुंह में जाते ही नीचा हो गया और जो सीढ़ी के मुंह पर आ गया वो ऊपर चढ़ गया। अतः स्वयं के भाग्य की करामात है। इसी तरह लूडो भी गेम है जिसमें भाग्य के साथ पुरुषार्थ भी काम करता है। पावापुरी नगरी का श्रावक गंगभद्र दृढ़ जिंधर्मानुरागी था, जीवादि तत्व का ज्ञाता, 12 व्रतधारी, धर्मनिष्ठ, सेवानिष्ठ, श्रमणोपासक था, सभी प्रकार की रिद्धि से संपन्न थे। शहर में उनका अच्छा कारोबार चलता था, समाज व शहर में प्रतिष्ठा भी अच्छी थी। साधु संतों के प्रति अपार श्रद्धावान थे। महान धनाढ्य होते हुए भी वह संत सेवा को सर्वोपरि स्थान देते थे। नगर में कोई भी साधु साध्वी पधारते, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, बहुश्रुत हो या अल्पश्रुत, आचार्य हो, उपाध्याय हो अथवा कोई सेवार्थी हो, पर गंगभद्र के हृदय में कोई भेदभाव नहीं था। एक भाव मन में जरूर रहता, साधु कोई भी हो पर चरित्र संपन्न हो, उन सभी साधुओं की सेवा करना अपना परम धर्म मानता था। वह लोगों से भी कहता था कि तुलसी का पत्ता छोटा हो या बड़ा गुण में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसी प्रकार साधु भले ही छोटा हो या बड़ा हो पर गुण में कोई अंतर नहीं पड़ता। अतः दिल खोलकर सात्विक भाव से सबकी सेवा करो, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। वह अंध भक्त नहीं था, उसकी भक्ति के पीछे सोच थी कि संतों की सेवा भी साधना का आलंबन है। सभी संत प्राणी मात्र के प्रति अहिंसक होते हैं, अतः वह मानता था कि उनके शरीर को सुविधा देने का कोई सही निमित्त बन जाता है तो वह सम्यक साधना का आधार है। उस सम्यक साधना से भारी कर्मों की निर्जरा हो जाती है। वो स्वयं भी ऐसी ही वस्तुएं वापरता जिसमें चरित्रात्माओं की निर्दोष सेवा का अवसर मिल सके। गंगभद्र इसी चिंतन के सहारे सदैव साधु संतों के योग्य सुविधा जुटाने की भावना रखता था। उनको साधना युक्त शरीर के लिए क्या क्या अपेक्षाएं हैं उसका भी प्रायः ध्यान रखता था। अपने घर पर भी प्रत्येक वस्तु रखने का ध्यान रखता ताकि किसी भी संत को कोई चीज की आवश्यकता हो तो तुरंत मिल जाए। इस तरह सेवा भक्ति से गंगभद्र अपना जीवन सार्थक कर रहा था। एक बार श्रावक गंगभद्र के शरीर में सफेद दाग उभर आए, तब उसने कई औषधियों का सेवन किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। समय निकल रहा था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था, उसी समय संयोग से एक सन्यासी आए, उसकी दुकान के आगे रुके और बोला, सेठ जी, मुझे भोजन करना है, तपस्या का पारणा करना है, क्या व्यवस्था होगी? गंगभद्र ने सोचा, अतिथि को भोजन देना मेरा धर्म है, अतः बोला, जरूर जरूर भोजन मिलेगा। वह योगी को ससम्मान लेकर अपने घर आया, श्रद्धापूर्वक योगी को भोजन कराया। भोजन कर योगी उसकी श्रद्धा भक्ति से खुश हो गया। भोजन कर जब खड़े हुए तो योगी ने गंगभद्र के शरीर पर सफेद दाग देखकर पूछा, ये दाग कब से हैं? गंगभद्र ने निराश होकर कहा, 2 वर्ष से है। तब योगी ने पूछा, क्या कोई उपचार नहीं कराया? गंगभद्र ने कहा, खूब इलाज कराया, खूब दवाइयां ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। सारी बात सुनकर योगी ने अपने झोले में हाथ डाला और एक पुड़िया निकाल कर गंगभद्र के हाथ में देते हुए कहा, इसको 3 दिन तक पानी के साथ ले लेना, दाग ठीक हो जाएंगे। गंगभद्र ने पुड़िया ले ली। पुड़िया देकर योगी अपनी राह चला गया। सेठ गंगभद्र दूसरे दिन से औषधि प्रारंभ करने वाला था, परंतु उसी दिन नगर में दो साधु पधारे। गंगभद्र के नियम था, गांव में साधु हो तो पहले दर्शन करना, फिर मुंह में पानी डालना। अतः साधु के दर्शन करने गया। दर्शन करते हुए उसने देखा, एक युवा साधु संघभद्र के शरीर पर कई जगह पट्टियां बंधी हुई है। पूछने पर ज्ञात हुआ कि कोढ़ हो गए है और पीव झरने वाला कोढ़ है। यह ठीक होना भी मुश्किल है। श्रावक गंगभद्र ने सोचा, मुनि की भरपूर चढ़ती जवानी और यह भयंकर रोग। उसने तुरंत निर्णय लिया, मेरे पास रखी हुई औषधि की तीन पुड़िया है, क्यों न मुनि जी को दे दूं। ये ठीक हो जाएंगे तो हजारों लोगों का भला करेंगे। वह मुनिराज से दवा ग्रहण करने की प्रार्थना की। तब मुनि जी ने दवा के बारे में पूछा तो उसे योगी द्वारा प्राप्त प्रसंग सुना दिया। सुनते ही संतों ने कहा, श्रावक जी, हमारा क्या है, हम जीवित लाख के हैं तो मरकर सवा लाख के हैं। तुम्हारे लिए प्राप्त औषधि लेने का हमारा विचार नहीं है। गंगभद्र ने पैर पकड़ लिए मुनिराज के तथा भाव विहोल होकर गिड़गिड़ाकर पुनः प्रार्थना करने लगा, मुनिराज मुझे लाभ दो। आखिर गंगभद्र की भक्ति के सामने मुनिराज को झुकना पड़ा। वे तीन दिन वहां रहे और औषधि का सेवन किया। औषधि सेवन से मुनिराज बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मुनि को स्वस्थ देखकर गंगभद्र के हर्ष का पार नहीं था। मुनि स्वस्थ होकर अन्यत्र विहार कर गए। कुछ वर्षों के बाद मुनि संघभद्र संघ के आचार्य बन गए। एक बार ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए आचार्य संघभद्र पावपुरी नगरी में पधारे। लोगों में भारी उत्साह था। गंगभद्र भी आगमन की सूचना सुनकर प्रसन्न हुआ। पावापुरी में विशाल जनसमूह के बीच आचार्य संघभद्र का प्रवचन हुआ। प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, श्रावक श्राविका साधुओं के माता पिता के समान होते हैं। आप लोगों ने अभी मेरे गुणगान गाए और साथ ही साथ यह भी कहा कि धन्य है आपके माता पिता को जिन्होंने आपको जन्म दिया। वे तो है ही, उनके अलावा एक और भी माता पिता तुल्य व्यक्ति है और वह है श्रावक गंगभद्र जी, जिन्होंने अपने शरीर की परवाह न करके मेरे शरीर को निरोग बनाया। आज मैं आचार्य पद पर हूँ, इनमें इन्हीं श्रावक जी का महान योगदान समझो। मैं इनकी अटूट भक्ति भावना को कैसे भूल सकता हूँ। इनको मैं संगपिता कहूँ तो भी कम है। अब तो गंगभद्र की सर्वत्र भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी। गंगभद्र प्रशंसा से ऊपर उठकर जीवन भर उत्कृष्ट भावों से, निस्वार्थ भावों से साधु संतों की सेवा करते रहे। अपना पूरा जीवन जिन शासन को समर्पित कर अंत समय में देवलोक प्राप्त करा। अतः संघ सेवा करने से भारी कर्म भी टूट जाते हैं। संघभद्र मुनिराज की सेवा गंगभद्र के भारी कर्मों की उदीरणा कराने वाली बनी है। स्वाध्याय ध्यान सेवा से भी पूर्वोपार्जित कर्म काटे जा सकते हैं। फारस देश की बात है। शहर शिराज में अनवर नाम का एक धनी आदमी रहता था। वह बड़ा ही नेक और सदाचारी था। जो कुछ दौलत उसके पास थी वह उसकी ईमानदारी की कमाई थी। अनवर नेक कामों में बहुत खर्च करता था और फिजूल खर्ची से हमेशा बचता रहता था। उसके हुसैन नाम का एक बेटा था। अनवर ने मरते समय अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है कि अगर तुम इसे संभाल कर रखोगे और संभाल कर खर्च करोगे तो कई पीढ़ियों के लिए काफी होगी। मैंने यह धन बड़ी मेहनत से कमाया है। मेरी मेहनत का ख्याल रखना और इसे बर्बाद मत करना। तुम्हें वह धन मुफ्त में मिल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बुरे लोगों की संगत में पड़कर इसे उड़ा दो। अगर बदकिस्मती से ऐसा मौका आवे तो मेरी दो बातें याद रखना। एक तो यह कि भले ही मकान का सामान बिक जाए, लेकिन मकान को हरगिज मत बेचना, क्योंकि बेघर आदमी का दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं होता। दूसरी बात यह कि तुम पर कितनी ही मुसीबत पड़े, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। और अगर ऐसा मौका आ ही जाए तो इस मकान के एक कोने में मैंने रस्सी लटका दी है। उसके नीचे स्टूल बिछा हुआ है, उस पर चढ़कर रस्सी का फंदा अपने गले में डाल लेना और स्टूल को ठोकर मारकर नीचे से हटा देना। इस तरह अपनी जान दे देना पर दूसरों के सामने हाथ मत फैलाना। अपने इकलौते बेटे को यह संदेश देकर बाप परलोक सिधार गया। बेटे ने कुछ ही दिनों में मौज करना शुरू कर दिया। दुनिया भर के शैतान उसके दोस्त बन गए और दोनों हाथों से उसे लूटने लगे। रात दिन राग रंग के उत्सव होते रहते और शराब के दौर चला करते। फिजूल खर्ची से तो शाही खजाने तक खाली हो जाते हैं। थोड़े दिनों में यह नौजवान अपना सारा धन खो बैठा, यहाँ तक कि घर की सभी चीजें बिक गई। जब उसके पास कुछ भी न रहा तो उसकी आंखें खुली, वह भूखा मरने लगा। मित्रों से सहायता मांगी, लेकिन मदद करनी तो दूर, भी उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगे। जब चारों तरफ से निराश हो गया और गुजर बसर का कोई साधन न रहा तो उसे बाप का उपदेश याद आया। उसने जान दे देने की ठानी। हिम्मत करके मकान के कोने में पहुंचा, स्टूल पर खड़ा होकर रस्सी का फंदा गले में डाल लिया और स्ट्रल को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। जैसे ही स्टूल हटा और हुसैन रस्सी से लटका कि जिस कड़ी में रस्सी बंधी थी वह टूट गई। हुसैन सही सलामत जमीन पर आ टिका। उसका बाल तक बांका न हुआ, साथ ही कड़ियों में से बहुत सी अशर्फियां नीचे आ गिरी। अनवर बड़ा दूरदर्शी था, उसने फांसी की रस्सी को एक ऐसी कमजोर कड़ी में बांध दिया था कि जोर पड़ते ही टूट जाए। इस कड़ी के सहारे 1000 अशर्फियां रखी थी। यह तरकीब अनवर ने अपने बेटे को शिक्षा और सहायता देने के लिए निकाली थी। हुसैन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसने अशर्फियां बटोर कर घर में रख दी। अब उसे दुनिया का बड़ा अनुभव हो चुका था। स्वार्थी मित्रों के व्यवहार को भी वह देख चुका था। उसने बुरी संगत में बैठना छोड़ दिया और संभल कर रहने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापार में मेहनत करने से अपने बाप की तरह मालदार हो गया। इसलिए कहते हैं, रोग तो वंशानुगत भी हो सकते हैं, पर बुरी आदतें केवल गलत दोस्तों से ही आती हैं। इसलिए दोस्त वे रखिए जिनसे हमारी शिक्षा, संस्कार, सम्मान और समृद्धि में बढ़ोतरी हो। वैसे भी आज की दुनिया में पिता से बड़ा अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार उसके पिता ने पुत्र के लिए जिंदगी को संवारने की व्यवस्था कर रखी थी, आखिर वो सुधर भी गया। उसी प्रकार भगवान महावीर ने भी ऐसी व्यवस्था दे रखी है जिसमें अनशन तप भारी है, बाकी छोटे बड़े अनेक तप हैं जो व्यक्ति के स्तर को ऊपर उठाते हैं। बच्चे के संस्कार को सही बनाए रखने के लिए उन्हें संत सानिध्य में भेजते रहें, ताकि एक न एक दिन सत्संस्कार जीवन को उठाते चले जाएंगे। जलंधर में नवकार महाजाप, तारांकन जपिए जपवाए तारांकन। तन मन आत्मा पावन करने के लिए 24 अगस्त से सवेरे 6 बजे से आप घर पर, दुकान, ऑफिस, कहीं पर भी नवकार माला जाप करिए। एक जाप में 5 पद ही बोलने आवश्यक हैं। ऐसो पंच नमोकारो आदि पद मंत्र के नहीं है, मंत्र का मतलब बताने के लिए बाद में जोड़े गए हैं। अतः मूल पद तो 5 तक ही है, इन्हीं का जाप करना है। हर व्यक्ति को पर्युषण के प्रथम दिन से 100 माला फेरना जरूरी है। जपिए नवकार पाए बेड़ा पार तारांकन। जो जितनी माला फेरे उतनी माला एक कार्ड में लिखकर जाप के बॉक्स में डाल दे ताकि काउंट हो सके। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हो।